हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। विधि कांशी को लेकर अपने घर पर आ चुका था। आंशी के बर्ताव से अब उसे थोड़ा थोड़ा उसे पर यकीन भी होने लगा था, लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं ले सकता था। खाने के बाद विधिक ने आंशी को एक इंजेक्शन दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो चुकी थी। आंशी नीचे गिरती उससे पहले विधिक ने उसे अपनी बाह में थाम लिया था। विधिक ने आंशी को थाम रखा था और उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। आंशी की आंखें बंद थीं। विधिक ने उसके फोरहेड पर किस किया और फिर उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया। आंशी को लेटाने के बाद विधिक ने शाहिद को कॉल पर कनेक्ट किया और उससे कहा, जेट तैयार है ना? मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, वैसे भी फ़्लाइट टाइम काफ़ी लंबा रहता है। हाँ, सब तैयार है बॉस, आप बस पहुँच जाइए, शाहिद ने जवाब दिया। विधिक ने आगे कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया। उसने अपना कुछ ज़रूरी सामान पहले से ही पैक कर रखा था और आंशी का वैसे भी वहाँ कुछ नहीं था। विधिक ने आंशी के लिए जो कपड़े मंगवाए थे वो आ चुके थे। विधिक कपड़ों को लेकर अंदर आया और फिर आंशी के शर्ट के बटन खोलने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। विधिक और आंशी एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम तक रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज भी आए थे, लेकिन आज तक वो दोनों इतने भी करीब नहीं आए थे कि विधिक ने उसे बिना कपड़ों के देखा हो। विधिक ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीरे से कहा, पता नहीं क्यों मेरे लिए तुम्हारा कॉन्सेंट मैटर करता है बटरफ्लाई, तुम अलग हो, सबसे अलग। तभी तुम्हारे साथ तो बेहोशी में भी कुछ गलत करने का मन नहीं करता। उसके बाद विधिक ने अपनी आंखें बंद की और आंशी के कपड़े निकाले। हालांकि उसे बहुत दिक्कत हो रही थी आंशी की ड्रेस चेंज करने में, लेकिन एक बार भी उसने आंखें नहीं खोली और आंशी के कपड़े बदल दिए थे। चेंज करवाने के बाद विधिक ने अपने होटल में कुछ खास आदमियों को बुलाया जो उसका सामान लेकर चल रहे थे, जबकि विधिक ने आंशी को अपनी गोद में थाम रखा था। देर रात 1 बजे विधिक आंशी को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। शाहिद वहां उसका इंतजार कर रहा था। फ्लाइट में बैठने से पहले विधिक ने शाहिद की तरफ देखकर कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे कॉल करना। बटरफ्लाई के लिए शांत ज़रूर हो रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं खुद को भूल रहा हूँ। किसी की इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो विधिक राणा की तरफ उंगली भी उठा सके। शाहिद उसके कहने का मतलब अच्छे से समझ रहा था। शाहिद ने जवाब में कहा, चिंता नहीं करने का बॉस, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ से क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में भी किसी को खबर नहीं होगी। विधिक ने उसकी बात पर हाँ में पलकें झपकाईं और फिर वहाँ से जेट में बैठ गया। शाहिद उसे जाते हुए देख रहा था और फिर धीरे से बोला, शेर भले ही दहाड़ना छोड़ दे, लेकिन जंगल का राजा वही कहलाता है और इस जंगल का राजा भी आप ही हो। उसके बाद शाहिद वहां से चला गया। दूसरी तरफ अमन आज रात एजेंसी में ही था। आंशी के घर ना होने की वजह से उसका वहां पर जाने का मन नहीं कर रहा था। उसकी बाकी टीम रात को घर जा चुकी थी, सिवाय लावण्या के। लावण्या ने देखा अमन देर रात तक अपने केबिन में बैठा था। वो वहां से आर्टिस्टिक का काम देख रहा था। लावण्या कॉफ़ी लेकर उसके पास पहुंची और कॉफ़ी का मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, उसे आने में टाइम लगेगा, कब तक इसी तरह रात भर बैठकर काम करते रहोगे? अमन ने लावण्या के चेहरे की तरफ देखा और कॉफ़ी का मग उठाते हुए बोला, पता नहीं, पर अब उसके बिना मन नहीं लगता, उसकी आदत सी हो गई है। अमन की बातों से लावण्या को बुरा तो बहुत लग रहा था। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रही और फिर उसने अचानक पूछा, ऐसा क्या है उस लड़की में जिसकी वजह से तुम उसके पीछे सब कुछ भूल गए हो? वहाँ वो विधिक राणा पागल हुआ बैठा है और तुम्हें भी उसी से प्यार होना था। पहले मुझे भी यही लगता था कि विधिक राणा जैसा इंसान जिसे किसी भी चीज़ की कदर नहीं है, वो आंशी के पीछे पागल कैसे हो सकता है? पर उसके साथ रहते हुए पता चला उसके लिए प्यार के अलावा और कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती। इतने दिनों तक उसके साथ रहा, उसने कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय मेरे, अमन ने जवाब दिया। बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। तो तुम दोनों अपने रिश्ते में काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, लावण्या ने हिचकिचाते हुए पूछा, जिस पर अमन ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। लावण्या के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। वो उसी अंदाज में बोली, तब तो मानना पड़ेगा उस लड़की में सच में कोई बात है। तुम मेरी बहन के साथ 3 साल से भी ज्यादा टाइम के लिए रिलेशनशिप में थे और लगभग 1.5-2 साल से मेरे साथ। हम दोनों ने ही कभी तुम्हें नहीं रोका और ना ही तुम्हारे करीब आने पर रोक दी, पर तुमने कभी अपनी हदें नहीं भूली थी। उससे तुम्हारी शादी हुए मुश्किल से 2 या 3 महीने हुए होंगे, इतने कम टाइम में ही तुम्हें उससे प्यार हो गया। लावण्या की बातों से साफ था कि वो अमन से अच्छे खासे बहस के मूड में है। अमन ने लावण्या की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा लवी, और ना ही तुम समझने के मूड में हो। अमन ने जवाब में इतना ही कहा और फिर उठकर वहां से जाने लगा। वो जानता था कि वो एजेंसी ऑफिस में कहीं भी रुका तो लावण्या उसके पास आ ही जाएगी और फिर से उनके बीच यही बहस शुरू हो जाएगी। अमन देर रात को अपने घर पर पहुंचा। आंशी से शादी के बाद वो बहुत कम मौकों पर देर से आता था। आंशी के घर पर ना होने की वजह से घर बिल्कुल सूना था। अमन ने ही घर पर जाकर लाइट जलाई थी। अमन अपने रूम में आया और फिर बेड की तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, नो डाउट विधिक तुम्हें पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहा होगा। आज उसकी जगह पर मैं आ गया हूँ। तुम मुझसे दूर हो गई हो और मुझे तुम्हें अपने पास लाना होगा। सब कुछ भुलाने के लिए अमन ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने आंशी का जैकेट लिया और उसे हक करके सोने लगा। इससे वो आंशी के एहसास को महसूस कर पा रहा था।